दिन भर 28 फरवरी दिन मंगलवार, मैं हूं संदीप सोनी। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक संगठनों का प्रदर्शन।
यूनिवर्सिटी की स्पेसेस जिस तरह से श्रिंक होती जा रही हैं, वो एक ग्रोइंग कंसर्न हमारे लिए हमेशा से है, और अब काफी टाइम हो चुका है इस चीज को, और अब ज्यादा हो गया है, तो बस अब हम सब इकट्ठे हो गए हैं कि किसके साथ हुआ, इट डजंट मैटर एनीमोर।
गुजरात दंगों के 15 साल बाद क्या सोचते हैं दंगा पीड़ित?
मेरा ये ख्याल है कि गोधरा में जिन लोगों को ट्रेन में मारा गया वो बहुत मासूम लोग थे, उनको इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक मोहरा बनाया गया।
मरने पर तुम्हें कब्र के लिए जमीन भी नहीं देंगे, चुनाव लड़ रही मुसलमान महिला को मौलवियों की धमकी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हिंसा को लेकर शुरू हुआ गतिरोध जारी है। आज दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तिरंगा मार्च निकाला। वहीं खालसा कॉलेज के बाहर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और शिक्षक बड़ी संख्या में उमड़े। इस मार्च में दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी समेत कई शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इस मार्च में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी पहुंचे। वहीं एबीवीपी के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर ने खुद को इस अभियान से अलग कर लिया है। अमेरिका के कैंसास में मारे गए भारतीय इंजीनियर का शव हैदराबाद में उनके घर लाया गया। वहां उनका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्रीनिवास कुछ बोधला का परिवार और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। उनकी मां का कहना है कि वो श्रीनिवास के छोटे भाई को अमेरिका वापस नहीं लौटने देंगी जो वहां नौकरी करते हैं। अमेरिका में एक पूर्व नौसैनिक ने श्रीनिवास और उनके एक दोस्त पर गोलियां चलाई थी जिसमें श्रीनिवास की मौत हो गई थी। आज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास दर के 7% रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा साल 2018 में 7.3 और वर्ष 2019 के लिए यह अनुमान 7.7% का बताया गया है। पिछले साल 500 और 1000 के नोट बंद करने का असर विकास दर पर पड़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि नोटबंदी को लेकर जो नकारात्मक अनुमान थे वो गलत साबित हुए हैं। वहीं सीएसओ ने कहा है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास से पिछले वित्त वर्ष के 0.8% के विकास के बढ़कर 4.4% होने का अनुमान है। प्रमुख सांख्यिकी अधिकारी टीसीए अनंत का ये कहना था।
ऐसा है, मैं किसी के अनुमान पे कमेंट तब भी नहीं करता था, अब भी नहीं करता। मेरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो अभी तक जो डेटा आया है उसमें क्या स्थिति नजर आती है, आगे क्या होगा वो अनुमान लगाने वाले अपनी तरफ से अनुमान लगाते हैं।
ये थे टीसीए अनंत के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया की सरकार और सहयोगियों पर किसी भी तरह के नए प्रतिबंध लगाने की किसी भी कोशिश का विरोध करने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में उन्होंने ये बात कही। अमेरिका और पश्चिमी देश सीरिया पर कथित तौर पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के एवज में नए प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि किसी भी तरह के नए प्रतिबंध से मौजूदा दौर में चल रही शांति वार्ता पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल पहली बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फॉक्स न्यूज के एक कार्यक्रम फॉक्स एंड फ्रेंड्स में उनके और उनके प्रशासन के खिलाफ हो रहे विरोध के पीछे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का हाथ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन में ओबामा के समर्थक कई जानकारियां लीक कर रहे हैं।
आई थिंक दैट प्रेसिडेंट ओबामा इज बिहाइंड इट बिकॉज़ हिज पीपल आर सर्टेनली बिहाइंड इट।
मुझे लगता है कि इसके पीछे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का हाथ है क्योंकि उनके लोग ही इसके पीछे हैं। संभव है कि कई जानकारियां इन लोगों ने लीक की हैं। इनमें से कुछ काफ़ी गंभीर हैं क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये राजनीति का हिस्सा है और वो इसके पीछे है, तो ये राजनीति ही है और मुझे लगता है कि ये आगे भी जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। बीबीसी समाचार। यमन में सहायता कर्मियों का कहना है कि देश में भुखमरी के हालात हैं, लेकिन फिर भी कई तटों से सहायता सामग्री पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी दिन भर का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत भारत की राजधानी दिल्ली से, जहां पिछले कुछ दिनों से हवा में थोड़ी थोड़ी गर्माहट महसूस होने लगी है। हल्का हल्का तापमान बढ़ रहा है ऐसा लगने लगा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा गर्माहट दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों महसूस हो रही है, जहां रामजस कॉलेज में दो छात्र गुटों के बीच टकराव के बाद छात्र हित और लोकतंत्र का हवाला देकर आज वामपंथी छात्र दल और शिक्षक संगठन सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज काफी गहमा गहमी रही। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे भी वहां मौजूद थे।
मैं हूं विनीत खरे और इस वक्त हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी में, जहां पर विभिन्न छात्र संगठन हैं, कुछ आयसा के हैं, कुछ आम छात्र हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी संगठन से, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां पर। बड़ी बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हैं, इसके अलावा पुलिस का भी भारी बंदोबस्त है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम वेदांत है। ये प्रोटेस्ट आपका जो रामजस कॉलेज में जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए, जो वायलेंस हुआ, जो प्रोफेसर्स पे मार हुआ फिलहाल, और बच्चों को जो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो वार हुआ, ये उसी के खिलाफ।
तो आप चाहते क्या है?
देखिए, यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज जाना है टू ऑल द रूलिंग पार्टी, टू ऑल द दिल्ली पुलिस एंड एवरीवन, जो हूएवर इज परपेट्रेटिंग वायलेंस, एंड दिस इज अ क्लियर कट मैसेज कि जो भी हमारी आजादी, बोलने की आजादी फिलहाल, उसके ऊपर जो भी हमला बोलेगा, हम छात्र इरेस्पेक्टिव, हम किसी भी कॉलेज से हों, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी से हों, हम इसके खिलाफ हैं।
आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं?
नहीं नहीं, मैं किसी भी संगठन से जुड़ा नहीं हूँ, मैं एक आम छात्र हूँ, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ।
मेरा नाम बागीश है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, बेसिकली रामजस कॉलेज में जो हुआ, एक सेमिनार किया गया था जिसमें उमर खालिद को बुलाया था, और उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एबीवीपी वहाँ पर आता है, ये कह के पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे वो लोग पत्थर फेंकते हैं, सेमिनार हॉल की लाइट बंद कर देते हैं, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वायलेंस करते हैं। सो बेसिकली वी वांट टू रीट्रेट दैट आइडिया दैट यूनिवर्सिटीज आर मेंट टू डिबेट, डिस्कशन एंड फॉर डाइसन, राइट? एंड whatever the differences we have to sort the differences by talking, right? By discussion, because without debates society cannot move forward.
जी, यहाँ जो भी हो रहा है आप देख लीजिए, आजादी, किसी ने आपसे ये नहीं बोला कि उस दिन उन्होंने बस्तर की आजादी मांगी और कश्मीर की आजादी मांगी, उस पर किसी को दिक्कत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच देश को तोड़ने के लिए नहीं है। आजादी अगर कश्मीर को या बस्तर को दिलानी है तो कश्मीर को मिलिटेंट से दिलवाइए और उनको नक्सलाइट से दिलवाइए, क्योंकि असली जड़ तो वही है ना वहाँ।
लेकिन गुरमेहर के साथ जो हुआ, जो उनका कहना है कि उनको धमकियां मिली, वो 20 साल की छात्र हैं, अगर अपनी बात कहना चाहती हैं तो उसमें क्या बुराई है?
अगर गुरमेहर कुछ कह रही हैं और उनको अगर कोई धमकी दे रहा है, तो मैंने अभी देखा है गुरमेहर ने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी।
जिस तरीके की धमकियां सामने आई है अभी तक, वो तो बहुत दिनों से मिलती आ रही है, अभी एकदम आमने सामने हो चुका लड़ाई, तो बोल दिया गया है कि धमकी आ रही है, वरना एबीवीपी तो धमकी देती रहती है, पीटती रहती है, बोलने की आजादी के ऊपर विश्वास तो नहीं करते हैं वो लोग।
ये जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना कहेंगे आप? आप किसी छात्र संगठन से जुड़ी हैं?
नहीं, मैं आई एम स्टूडेंट फ्रॉम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली।
यहाँ पर समर्थन करने आई है, जिस तरह की बातें हुई जा रही, गुरमेहर को जिस तरह से थ्रेट मिला है, आप बताइए, आप सोशल मीडिया पर रहती होंगी, क्या आपके साथ क्या गुजरता है?
यूनिवर्सिटी की स्पेसेस जिस तरह से श्रिंक होती जा रही हैं, वो एक ग्रोइंग कंसर्न हमारे लिए हमेशा से है, और अब काफी टाइम हो चुका है इस चीज को, और अब ज्यादा हो गया है, तो बस अब हम सब इकट्ठे हो गए हैं कि किसके साथ हुआ, इट डजंट मैटर एनीमोर।
क्या ये जब सवाल आता है देशभक्त, नेशनलिज्म की बात होती है, नेशनलिज्म आपके लिए क्या मायने रखता है?
नेशनलिज्म मेरे लिए ये मायने लगता है कि भाई, मुझे लगता है कि जिन चीजों के लिए हम खड़े हैं, उन चीजों के लिए हम खड़े रहे।
सोशल मीडिया पे लोगों को हैरेस करने का एक नया ट्रेंड चला है, आई थिंक वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। बात करने के बेस में अगर आप दूसरों को हैरेस कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। अदरवाइज आई थिंक सबके पास स्पेस है बोलने के लिए, बट इफ इट बिकम्स पॉइंटलेस अगर उसका इंटेंट अपनी बात रखना नहीं और दूसरों की बात चुप करवाना
और हर्ट करना
और हर्ट करना।
ये जो नाराजगी है, ये कितनी रियल है या फिर पोलिटिसाइजेशन का ज्यादा असर दिख रहा है?
जो नाराजगी है वो आप भी देख रहे हैं कि कितनी रियल है। ये सचमुच एक नाराजगी है आजाद यूनिवर्सिटी के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आजादी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? कौन से नेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं? मैं इस मुल्क में रहती हूँ, इस मुल्क की अच्छी चीजें मेरे लिए अच्छी हैं, लेकिन मेरे आसपास जो छोटी छोटी चीजें या बड़ी बड़ी चीजें बुरी हैं, being the citizen of India, it is my responsibility to highlight, to get it rectified. Agar anti-government hone se hum anti-national ho jate hain, to ye nationalism ka idea mere gale se nahi utarta hai. जो स्टेटमेंट आया गुरमेहर के स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं कि मेरे फादर को पाकिस्तान ने नहीं जंग ने मारा. मैं जब स्कूल में थी मैं एनसीसी कैडेट थी. हमारा एनसीसी का सॉन्ग है, मुझे नहीं पता पिछले 3 साल में शायद वो सॉन्ग बदल भी गया हो. वो सॉन्ग ये कहता है कि हम सारी दुनिया में अब कोई जंग ना होने देंगे, हम मानव को ऐसी मौत की नींद ना सोने देंगे. ये एनसीसी इंडिया का सॉन्ग है. तो क्या हम उस सॉन्ग को एंटी नेशनल कह दें? क्या हम ये कह दें कि जंग ठीक है? क्या अशोक जिसे हम ग्रेट मानते हैं उसने जंग से तौबा नहीं की थी? उसने नहीं कहा था कि वायलेंस गलत? वी आर अगेंस्ट वायलेंस, किसी भी किस किस्म का वायलेंस.
दिल्ली विश्वविद्यालय में जुटे छात्रों और शिक्षकों से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता विनीत खरे. और दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर को लेकर सोशल मीडिया पर जारी इसे बवाल ही कह सकते हैं, इस बवाल में अब कई बड़े नाम कूद गए हैं. वीरेंद्र सहवाग के बाद रणदीप हुड्डा और अब पहलवान योगेश्वर दत्त, और इन सभी को निशाने पर ले रहे हैं लेखक और गीतकार जावेद अख्तर. इस खबर को पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट, मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर.
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो.
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी.
आज से 15 साल पहले यानी 28 फरवरी 2002 को गुजरात दंगों की शुरुआत हुई थी. और इन दंगों में सरकारी आंकड़ों की माने तो लगभग 1250 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर मुसलमान थे. लेकिन इससे पहले भी भारत में कई ऐसे दंगे हुए हैं जिनके बारे में बात बहुत बहुत कम होती है गुजरात दंगों के मुकाबले. साल 1989 में बिहार के भागलपुर शहर में एक ऐसा ही भयानक दंगा हुआ था जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी और भागलपुर दंगों की एक पीड़ित मलका बेगम से बात की. सबसे पहले उन्होंने जकिया जाफरी से पूछा कि बीते 15 वर्षों को, जो 15 साल बीत गए हैं गुजरात दंगों के बाद, वो कैसे देखती हैं?
जेल तो उनको हुई थोड़ों को, और उन्होंने 35 थे कि 40 में तो भूल भी गई, 45 लोग थे, उनको उन्होंने बरी कर दिया है. और बाकी जो है तो कुछ जेल के अंदर भी है, मतलब कि नहीं, लेकिन वो भी बरी हो जाने वाले, क्योंकि अभी मोदी तो समझते ही ना कि उनको अपने को बरी कर देना चाहिए. लेकिन अभी कुछ इंसाफ तो जो सब कुछ हुआ नहीं. अब वो मोदी को कुछ वो लोग कुछ करे तो एक बात की बात है, मोदी तो क्या इंसाफ देंगे उन लोग. मेरे को ऊपर वाला जो है उससे कभी न कभी उसकी चार आँखें जो मेरे को इंसाफ मिलेगा, और इस जद्दोजहद से मैं अपना जंग जारी रख रही हूँ.
मेरे पास इस वक्त निशरीन जाफरी भी हैं जो एहसान जाफरी साहब की बेटी हैं. वो उस वक्त मेरा ख्याल है अमेरिका में थी. निशरीन, ज़ाहिर अब घर में जब ऐसा कुछ हो जाए तो क्या आपको कभी एहसास होता है कि उन आखिरी लम्हों में आप अपने अब्बा जान के साथ नहीं थी?
ऑफ कोर्स दिन हर रोज़ होता है वो, तो उसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं है. लेकिन मैं वहाँ नहीं थी. और दूसरी दर्द की बात ये है कि मैंने उनसे 5-6 दिन से बात नहीं की थी. मैं उनसे ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार बात करती थी, और कुछ बिजी हो जाने की वजह से मैंने उस सैटरडे को उनसे बात नहीं की थी.
तो इन 15 सालों में आपका सफ़र कैसा रहा?
बहुत ही अप एंड डाउन रहा है. यू नो, इतना दूर से ये सब होते हुए देखना, और जिस तरह से ये केस के बारे में जो कुछ होता है यहाँ पर, बहुत दुख होता है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 1969 में इतना सारा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं था, लेकिन 2002 में तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया है. और ये जानते हुए कि डेलिब्रेटली जस्टिस नहीं दी जा रही है, उससे बहुत दुख होता है. बाबू बजरंगी जो है, इतना उन्होंने कत्लेआम किया, राइट, और वो आज बेल पर है. माया कोदनानी जो है वो चीफ में, वहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर थी या वुमेंस एम्पावर मिनिस्टर थी, वो आज बेल पर है. मतलब ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्पिरसी थी उसमें धीरे धीरे जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको धीरे धीरे अब बाहर करते जा रहे हैं वो. मुझे बहुत दुख है जब ये जो गोधरा के अंदर जिन लोगों को मारा गया, मेरा ये ख्याल है कि गोधरा में जिन लोगों को ट्रेन में मारा गया वो बहुत मासूम लोग थे, उनको इस कॉन्स्पिरसी के अंदर एक मोहरा बनाया गया.
राहत इंदौरी जो बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने गुजरात दंगों के बारे में एक शेर लिखा था کہ قلم والو سیاسی ظلم کی روداد لکھ دینا، قیامت جب بھی لکھنا ہو احمد آباد لکھ دینا، لیکن اس ملک میں قیامت تو صرف اور صرف 2000 میں احمد آباد کی سڑکوں پہ ہوئی، یہ ماننا اور یہ سوچنا شاید غلط ہوگا. میرے پاس اس وقت موجود ہیں خاتون ملکہ بیگم جن کا نام ہے، اور شاید آپ میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ 1989 میں بہار کے بھاگلپور شہر میں جو دنگا ہوا تھا اس کی پیڑت ہیں.
جمعہ کا دن تھا اور ایک بیگ وہ لوگ اٹیک کیا، جب جمعہ پڑھنے جا رہے تھے تو سارے لوگ اٹیک کر دیا، بولا یہاں پر جمعہ نہیں پڑھو، مطلب بھاگنے کا جگہ نہیں تھا، آگے بھی انسان پیچھے بھی، بغل میں گھر تو آگے پیچھے تلاؤ، تو آگے بھی کاٹا پیچھے بھی کاٹا، چھوٹے چھوٹے بچے کو، سال کے بچے کو پکڑ کے چیر دیا گیا ہے دھوبی سے. میں کسی طرح پانی میں تھا، چھلنگ لگا دیا پانی میں، جب چھلنگ لگا تو پانی میں مجھے بار کرا جو میرا پیر پورا کٹا ہوا ہے. تو وہ جو فوجی رات میں ہم لوگ کو رکھ گیا تھا وہی ریٹرن آیا، تو وہ دیکھا ہی نہیں، چلا گیا گھر پہ. اگر نیچے دیکھتا تو کافی لاش پڑی ہوئی تھی اس جگہ. پھر ادھر سے جب گیا تو وہاں پر بولا گیا کہ یہ لوگ کہاں گئے، بولا رات میں بھاگ گئے سب. پھر ادھر سے ریٹرن آیا تو میں آواز دے نہیں پا رہی تھی، پھر کسی طرح کوشش کر کے بہت زور سے بولے گاڑی روکیے، یہ نہیں کہ کون ہے، بولا گاڑی روکیے. تو وہ لوگ روکے، جب جیسے اترا تو پوری لاش کی ڈھیر لگی ہوئی تھی. تو ہم ان کو اتنا سا ہاتھ دکھایا کہ ہم یہاں ہیں، بولا نکلو، ہم بولے ہم نکل نہیں سکتے، میرا پیر کٹا ہوا ہے. تو رائفل کو وہ کونڈ دیا ہے، اب پکڑ کے کھینچ کے وہ جب نکالا تو لحاظ کافی ڈالا ہوا تھا، سارا لحاظ جل گیا. مجھے نکال کے روڈ پہ رکھا. اس کے بعد جب میری پٹنہ میں ہائی کورٹ میں گواہ چلی تو وہاں گواہ سے میں نے سارا بتایا، پورا میرا گواہ ہوا، اس 6 سے 7 سال گواہ چلی. تو اس میں 17 لوگ کو جیون کارواس کا سزا ہوا ہے، باقی لوگ چھوٹ گئے. پھر اتنی یہ مجھے تو سنتوشٹی نہیں تھی کہ اتنا ہی مطلب سزا ہو جائے، جو یہ مجھے انصاف مل گیا. انصاف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو مار دیا تو 1,10,000 دو یا 3.5 لاکھ روپیہ دے دیا تو وہ اس کا سمسیا سمادھان ہو گیا. میرا پیر کٹا ہے، مجھے کیا 1,25,000 روپیہ معاوضہ ملا تھا. آج 28 سال دنگا کو ہو گیا، ہر سال میں 15,000 روپیہ لگتا جوتا میں. آپ لوگ خود بتا سکتے ہیں کہ کیسے مطلب 15,000 جو جوتا میں لگتا ہے، تو یہ 1,25,000 کا کیا مراد ہے؟ نہ مجھے کوئی نوکری ملی، نہ میرے بچے کو کسی اچھے کالج یا اسکول میں ایڈمیشن ملتا ہے.
گجرات دنگوں کی پیڑت زکیہ جعفری اور بھاگلپور دنگوں کی پیڑت ملکہ بیگم سے بات کر رہے تھے بی بی سی سنواد داتا اقبال احمد. اور ایسا واقعہ سننے میں بہت کم آتا ہے، مجھے تو دھیان نہیں آتا میں نے اس سے پہلے کب سنا ہے ایسا، کہ مرنے پر تمہیں قبر کے لیے زمین بھی نہیں دیں گے. یہ دھمکی ایک مسلمان مہیلا کو مولویوں سے ملی ہے. معاملہ ہے منی پور کا، جہاں 4 اور 8 مارچ کو ودھان سبھا چناؤ کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. کیا ہے یہ پورا معاملہ، بتا رہے ہیں گواہٹی سے دلیپ کمار شرما.
پوروتر بھارت کے منی پور سے ستھانیہ میتی بھاشا میں بول رہی ناجیمہ فندری مایوم اس بار کے ودھان سبھا چناؤ میں ایک ماتر مسلم مہیلا امیدوار ہیں. پیپلز ریسرجنس اینڈ جسٹس الائنس نے وابگائی ودھان سبھا سیٹ سے 44 سال کی ناجیمہ کو اپنا امیدوار بنایا ہے. ان کے گاؤں سنتھیل میں لوگ پیار سے انہیں ناجیمہ بی بی کہہ کر بلاتے ہیں، لیکن میتے پنگل ارتھات منی پوری مسلم سمودائے سے تعلق رکھنے والی ناجیمہ کے چناؤ میں کھڑے ہونے سے گاؤں کے کچھ مولوی بے حد ناراض ہیں. ان مولویوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ ناجیمہ کو مرنے کے بعد گاؤں میں قبر کے لیے زمین نہیں دیں گے. میں ایسی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، اس لیے چناؤ لڑ رہی ہوں. میں صرف مہیلاؤں کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو سنکٹ میں ہیں. ایسی مہیلاؤں کو آرتھک روپ سے آگے بڑھانا اور ان کا وکاس کرنا کسی بھی طرح سے اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہاں تو سائیکل چلانے کو لے کر بھی لوگوں کی بری باتیں سننی پڑتی ہیں. میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، وہ اسلام کا مہتوپورن حصہ ہے اور میں ان کی عزت کرتی ہوں. یہ تھے ناجیمہ بی بی کے شبد. دراصل جن مولویوں نے سارجنک روپ سے ناجیمہ کو مرنے کے بعد گاؤں میں قبر کے لیے زمین نہیں دینے کی دھمکی دی ہے، وہ اپنی ناراضگی کا کوئی کارن نہیں بتاتے اور نہ ہی اب اس وشے پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن منی پور کے سب سے پرانے مدرسہ آلیہ کے پرمکھ تتھا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سدسیہ محمد نور الدین قاسمی کہتے ہیں،
مسلمانوں
मुसलमान औरत जो है पर्दे के अंदर रहना चाहिए थे और पर्दे जो है मुसलमान नहीं है वो खुद पर्दे कर सके। और दूसरी बात है जनाब आकाश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि कौन ने किसी औरत को उनका सरदार बनाया, खलीफा बनाया, सरदार बनाया तो उन कौम का बर्बादी का हुक्म दिया है, बर्बाद हो जाएंगे वे सब।
मौलवियों की धमकी के बाद नाजिमा अपनी पार्टी नेता इरोम शर्मिला के साथ हाल ही में प्रदेश की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात कर चुकी है। इरोम शर्मिला की पार्टी की मीडिया प्रबंधक गीतिका सहमे ने बीबीसी से कहा,
जी बिल्कुल नाजमा बीबी हमारी उम्मीदवार है वाका केंद्र से, उनके खिलाफ मौलवियों ने फतवा जारी किया है कि उन्हें कब्र की जगह नहीं दी जाएगी क्योंकि वो एक महिला है, पॉलिटिक्स में है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो नाजमा जी ने यहाँ पे जो मणिपुर की गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला उनसे मिलकर शिकायत दर्ज की है।
मणिपुर की राजनीति में मैतेई मुस्लिम की हमेशा अहमियत रही है। प्रदेश में वाबगई समेत ऐसी 4 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं, लेकिन बावजूद इसके मुख्य तौर पर इस बार का मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
चुनाव आएगा तो हम एक दूसरे की बखिया उधेड़ेंगे, काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रखेंगे, छिपाए न छिपने वाला भ्रष्टाचार या कोई अन्य संगीन आपराधिक आरोप हुआ तो जेल भेजने का वादा भी कर लेंगे, लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो सब भूल जाएंगे। ये भारतीय राजनीति का सबसे विश्वसनीय अलिखित, जो लिखा नहीं गया है कहीं, एक घोषणा पत्र है जिस पर सभी दलों के नेताओं के अदृश्य हस्ताक्षर हैं। ये एक नज़रिया है, जो एक मैनिफेस्टो है जिस पर मोदी, मुलायम, तमाम दलों के नेता सहमत से नज़र आते हैं। इस नज़रिए को पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और एक खबर अब थोड़ा हटकर, भारत में आप जानते हैं आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। ऐसे लोग हमने अपने आसपास देखे हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए भारत में पहली बार सांकेतिक भाषा का शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य।
डेफ लोग नेचुरली वो साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। साइन लैंग्वेज इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, उसके अपने ग्रामर है, अपनी स्ट्रक्चर है, अपने रूल्स हैं, अपना वोकैबुलरी है।
साइन लैंग्वेज महज इशारे नहीं होते बल्कि किसी अन्य भाषा की ही तरह इसका अपना व्याकरण और नियम है, लेकिन इसमें बातचीत करने वाले लोगों की अंग्रेजी और हिंदी जैसी भाषाओं पर पकड़ कमजोर होती है क्योंकि उन्होंने वो कभी बोली या सुनी नहीं है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय के तहत साल 2016 में बनाए गए इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में साइन लैंग्वेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अंदेशा मंगला समझाती हैं।
बहुत डिफिकल्ट होता है उस इंग्लिश का ग्रामर सीखना या फिर हिंदी का ग्रामर सीखना, उसकी वोकैबुलरी सीखना, क्योंकि वो अपनी नेचुरल कम्युनिकेशन में साइन लैंग्वेज यूज करते हैं एंड साइन लैंग्वेज का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इट्स नॉट वो लिखी नहीं जाती है। सो वो जो साइन लैंग्वेज उनके जो फर्स्ट लैंग्वेज है उससे जो सेकेंड लैंग्वेज जो हम राइटिंग कर रहे हैं उधर वो ब्रिज बनाना होता है।
इस साइन लैंग्वेज डिक्शनरी में सिर्फ मूक बधिर लोगों के साइंस का अनुवाद ही नहीं होगा बल्कि उसका भाषा ज्ञान भी दिया जाएगा। इस्लाम उल हक पैदाइश से मूक बधिर हैं। जब मैं उनसे मिली तो उनकी सहयोगी खुशबू दुआ ने उनके साइंस इंटरप्रेट कर मुझे डिक्शनरी के बारे में बताया।
इस्लाम जी साइंस से बता रहे हैं कि फूड इज गुड, तो जब हम साइन में उसको यूज करते हैं तो फूड गुड दो साइन आते हैं, दिस इज अ कम्प्लीट सेंटेंस। और जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो द फूड इज गुड, तो जो द है और जो इज है वो साइन हम प्रॉपर तो नहीं कर रहे हैं, फूड गुड दो साइन आ रहे हैं पर वो कम्प्लीट सेंटेंस है।
यानी आप ये कह रही हैं कि आपको अगर साइन लैंग्वेज में ये बताना हो कि फूड इज गुड यानी कि खाना अच्छा है तो आपको सिर्फ दो साइन बनाने होंगे, एक फूड का और एक गुड का, पर अगर आपको उसको भाषा में लिखना है अंग्रेजी भाषा में तो द फूड इज गुड यानी उसमें द और इज भी आएगा, और साइन लैंग्वेज डिक्शनरी से ये ग्रामर समझने में आसानी होगी जो साइंस की लैंग्वेज में ज़रूरी है ही नहीं। आप सोचेंगे कि क्या दुनिया में पहले से मौजूद साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का इस्तेमाल भारत में नहीं हो सकता? हो तो सकता है, पर एक ही शब्द के साइंस देश की संस्कृति और स्थानीय परंपराओं के मुताबिक अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शादी का साइन अमेरिकी साइन लैंग्वेज में अंगूठी पहनाने से जुड़ा है, जबकि इंडियन साइन लैंग्वेज में ये हथेलियों को एक के ऊपर एक रखकर दिखाया जाता है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव अवनीश कुमार अवस्थी बताते हैं,
देश में अलग अलग जगहों पर साउथ में यानी दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, कुछ जगहों पर नॉर्थ में अलग अलग मेथड्स हैं साइन लैंग्वेज पढ़ाने के। तो पहली चीज़ तो हमको डिक्शनरी एक बनानी पड़ेगी जिससे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइन लैंग्वेज हो जाए, यानी एक ही मानक पर साइन लैंग्वेज पूरे देश में जो है कम से कम पढ़ाया जाए।
उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत में मुट्ठी बंद कर दोनों बाहों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो उसे शादी का साइन माना जाता है, पर इसी साइन को उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जेल का साइन माना जाता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग विकलांग हैं, जिनमें से 50 लाख को सुनाई नहीं देता है या उनकी सुनने की शक्ति कमजोर है। साइन लैंग्वेज इनके लिए संचार का एकमात्र तरीका होता है। भारत में करीब 700 ऐसे स्कूल हैं जहां इसकी मदद से पढ़ाई की जा रही है, पर ये नाकाफी है और इनके बारे में भी जानकारी बहुत कम है। अवनीश कुमार अवस्थी बताते हैं,
आज हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में डेफ लोगों की संख्या बहुत कम है, और जब वो ऊपर पढ़कर नहीं आ पाते हैं हायर एजुकेशन में जो है उनको स्थान नहीं मिलता है, तो फिर नौकरियों में भी उनका स्थान नहीं होता। इस कारण से नौकरियों में अगर देखेंगे 1% अगर फिजिकली इम्पेयर्ड के लिए है, 1% हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, 1% विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है, तो इसमें हियरिंग इम्पेयर्ड के पद काफ़ी हद तक खाली इसलिए है क्योंकि क्वालिफाइड लोग ही अवेलेबल नहीं है।
मंत्रालय को उम्मीद है कि साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मूक बधिर लोगों को रोजगार, शिक्षा, औपचारिक स्तर पर बातचीत, चिट्ठी लिखने वगैरह में मददगार साबित होगी और साथ ही अनुवादकों के लिए भी उपयोगी होगी। ये डिक्शनरी छपी हुई किताब के साथ साथ वेबसाइट पर वीडियोस के साथ भी उपलब्ध होगी। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
और अब सुनते हैं खेल समाचार वैभव दीवान से।
ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में खेले गए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की पिच को खराब रेटिंग दी है, जहां मेहमान टीम ने 3 दिन के भीतर ही मैच जीत लिया था। ICC ने बयान में कहा है कि यह रिपोर्ट BCCI को भेज दी गई है, जिसके पास जवाब देने के लिए 14 दिन का समय है। इस मुद्दे पर BBC हिंदी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार अयाज मेमन से और पूछा, क्या पुणे की पिच को खराब कहना सही होगा?
मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर एक मैच जो है 3 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाती है, कोई एक टीम भी 300 रन नहीं बना सकती, बल्कि इंडियन टीम जो होम टीम थी वो 105 और 107 में आउट हो जाती है, और पहली ओवर दोनों ही टीम ने शुरू किया स्पिन गेंदबाजों से, तो ये तो जाहिर करता है कि पिच जो है वो अंडर प्रिपेयर्ड थी और टेस्ट मैच के लिए शोभा नहीं दे रही थी, ये तो इतना तो साफ था।
यह पहली बार नहीं है जब किसी मैच रेफरी ने भारतीय पिच को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की है। दिसंबर 2015 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागपुर में तीसरे क्रिकेट टेस्ट की पिच को भी मैच रेफरी ने खराब करार दिया था, तब भी मैच 3 दिन के भीतर ही खत्म हो गया था। भारत ने वो मैच 124 रनों से जीता और श्रृंखला में 2-0 से बढ़त बना ली थी। फिलहाल भारत ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा सीरीज में भारत 1-0 से पीछे है। अगला टेस्ट मैच 4 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब बात शूटिंग वर्ल्ड कप की। दिल्ली में चल रहा है ISSF टूर्नामेंट, जहां पर शीर्ष पिस्टल निशानेबाज जीतू राय ने शानदार वापसी करते हुए इस विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जिससे अब भारत इस मुकाबले में चौथे स्थान पर है। इस टूर्नामेंट में जीतू ने कल हीना सिद्धू के साथ जोड़ी में एक मुकाबले में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने गोल्ड बैच जीता था। आज ही 2 अन्य भारतीय निशानेबाज ओमकार सिंह और अमनप्रीत सिंह ने भी एयर पिस्टल स्पर्धा में भाग लिया, लेकिन वे क्वालिफिकेशन चरण से आगे नहीं बढ़ सके।
इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
BBC समाचार। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हिंसा को लेकर गतिरोध जारी। दिल्ली में ABVP का तिरंगा मार्च, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र भी मार्च में शामिल हुए। अमेरिका के कैंसर में मारे गए भारतीय इंजीनियर का शव हैदराबाद में उनके घर लाया गया, परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया। आज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर के 7% रहने का अनुमान जताया। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को अनुमति दीजिए, पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। नमस्कार।